एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो है तो लगभग 850 साल पुरानी, लेकिन जिसकी बातें, जिसकी गूंज आज भी उतनी ही साफ सुनाई देती है।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं रैबी मोशे बिन मैमन यानी मैमोनाइड्स की मशहूर कृति द गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड की।
नमस्कार। और ये किताब वाकई में बहुत खास है। सोचिए, मतलब उस जमाने में भी लोग ठीक वैसी ही उलझन महसूस करते थे जैसी आज हम में से कई लोग करते हैं।
हाँ,
अपनी आस्था, अपनी धार्मिक मान्यताओं और दूसरी तरफ तर्क, विज्ञान और दर्शन की दुनिया, इनके बीच तालमेल कैसे बिठाएं।
सही कहा।
मैमोनाइट्स ने ये किताब उन्हीं परप्लेक्स्ड यानी कह सकते हैं उलझे हुए बुद्धिजीवियों के लिए लिखी थी जो टोरा की शिक्षाओं और अरस्तु के दर्शन के बीच एक तहे का खिंचाव महसूस कर रहे थे।
बिल्कुल, ये संघर्ष तो मतलब आज भी जारी है ना? जैसे जब हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं और फिर सृष्टि की कहानियां सुनते हैं।
हाँ, या न्यूरो साइंस और आत्मा की बात।
बिल्कुल, तो आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि मैमोनाइट्स ने इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझाया, कैसे उन्होंने आस्था और तर्क के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। ये समझना आज भी हमारे लिए बहुत मायने रख सकता है।
तो शुरुआत करते हैं इस अद्भुत विचारक से, मैमोनाइट से, रबी मोशे बेन मामन, जिन्हें पश्चिम में मैमोनाइट्स कहते हैं और हिब्रू परंपरा में रामबाम।
रामबाम, हाँ।
वो 12वीं सदी के लगभग 1138 से 1204 एक असाधारण व्यक्तित्व थे। वो सिर्फ यहूदी इतिहास के ही नहीं बल्कि पूरे मध्ययुगीन दर्शन के एक चमकते सितारे थे।
और उनका जीवन भी कम दिलचस्प नहीं था। जन्म हुआ स्पेन के कॉर्डोवा में, एक ऐसी जगह जहां उस समय यहूदी, इस्लामी, ईसाई संस्कृतियां सब घुल मिल रही थी। विचारों का एक अद्भुत संगम था।
हाँ, वो दौर ही ऐसा था।
लेकिन फिर धार्मिक कट्टरता बढ़ी, उत्पीड़न का दौर आया, उनके परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा, वो मोरक्को गए, फिलिस्तीन गए और आखिरकार मिस्र में बसे।
कल्पना कीजिए, इतनी उथल पुथल के बीच भी उन्होंने कितना कुछ रचा।
वही तो।
बिल्कुल, और वो सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वो एक सच्चे पॉलीमैथ थे यानी कई विषयों के ज्ञाता। वो एक माने हुए डॉक्टर थे।
हाँ, सुना है सुल्तान सलाद्दीन के वजीर के निजी चिकित्सक थे।
जी हाँ बिल्कुल, वो खगोल विज्ञान जानते थे, तर्कशास्त्र में माहिर थे और सबसे बढ़कर वो यहूदी कानून के उस समय के शायद सबसे बड़े विद्वान थे। उनकी लिखी कानूनी संहिता मिशने तोराह तो आज भी यहूदी कानून की पढ़ाई का आधार है।
यही बात उन्हें खास बनाती है ना? एक तरफ इतनी गहरी धार्मिक आस्था और परंपरा का ज्ञान,
और दूसरी तरफ
विज्ञान और दर्शन की गहरी समझ, खासकर अरस्तु और जो अरबी दार्शनिक थे अल-फ़ारबी, इब्न सीना।
हाँ, उनकी भी गहरी समझ। वो परंपरा के अंदर से बात कर रहे थे, उन पढ़े लिखे लोगों की बेचैनी को समझ रहे थे जो अपनी आस्था से तो प्यार करते थे लेकिन अपने तार्किक दिमाग को उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते थे।
और उनका मकसद आस्था को कमजोर करना नहीं था।
बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे तर्क की कसौटी पर कसकर और मजबूत बनाना था।
अब आते हैं किताब पर, द गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड। आपने कहा ये कोई आम किताब नहीं है बल्कि पत्रों की श्रृंखला है।
हाँ, असल में ये चिट्ठियां हैं जो मैमोनाइट्स ने अपने एक बहुत होनहार और प्यारे छात्र रबी जोसेफ इब्न आखनीन को लिखी थी। ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि ये किसके लिए लिखी गई थी। ये मतलब एकदम नए सीखने वालों या कट्टर नास्तिकों के लिए नहीं थी।
अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए थी जो बीच में थे, जैसा नाम ही है, उलझे हुए।
बिल्कुल, ये वो लोग थे जो धार्मिक जीवन जी रहे थे, टोरा का सम्मान करते थे, पर जब वो दर्शन और विज्ञान पढ़ते थे तो उन्हें धर्मग्रंथ की कुछ बातें, खासकर जहां ईश्वर को इंसानों जैसा दिखाया गया है,
जैसे ईश्वर का हाथ, चेहरा, गुस्सा, ये सब।
हाँ, ये सब बातें थोड़ी अटपटी लगती थी, तर्क के शायद विपरीत लगती थी। उन्हें लगता था कि क्या उनकी आस्था और उनकी बुद्धि एक दूसरे के खिलाफ है। मैमोनाइट्स का लक्ष्य इसी खाई को पाटना था। वो कहते हैं कि ये उलझन इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम धर्मग्रंथ को सिर्फ उसके शाब्दिक अर्थ तक सीमित रखते हैं, अरबी में जिसे जाहिर कहा गया।
अच्छा, यानी बाहरी मतलब।
हाँ, वो तर्क देते हैं कि इस शाब्दिक परत के नीचे एक गहरा दार्शनिक अर्थ बातिन छिपा है और यहीं पर रूपक यानी एलिगरी और दार्शनिक व्याख्या की भूमिका आती है।
तो उनका कहना था कि अगर हम इस गहरे अर्थ को समझें तो पता चलेगा कि धर्मग्रंथ की बातें और तर्क से निकले सत्य वो विरोधी नहीं है।
हाँ, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किताब हमें एक यात्रा पर ले जाती है। पहले तो ईश्वर के बारे में हमारी जो बचकानी मानवारूपी धारणाएं हैं उन्हें तोड़ना, फिर ब्रह्मांड, सृष्टि, फरिश्तों और भविष्यवाणी जैसी चीजों को एक दार्शनिक नजरिए से समझना, और आखिर में ये सोचना कि दुनिया में बुराई क्यों है और हमारे जीवन का असली मकसद क्या है।
चलिए, तो अब इस किताब के तीन मुख्य भागों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहला भाग आपने बताया ईश्वर की प्रकृति और धर्म ग्रंथ की सही व्याख्या पर है। यहाँ मेमोनाइट्स का मुख्य जोर किस बात पर है?
पहले भाग में मेमोनाइट्स का सबसे बड़ा जोर इस बात पर है कि ईश्वर पूरी तरह से अशरीरी है, इनकॉर्पोरियल और अद्वितीय है, यूनिक है। वो कहते हैं कि ईश्वर को कोई भी भौतिक गुण देना, जैसे हाथ, पैर, चेहरा, या मानवीय भावनाएं देना, जैसे गुस्सा या पछतावा,
वो सबसे बड़ी गलती है।
हाँ, उनके लिए ये एक तरह की मूर्ति पूजा ही है, चाहे वो कितनी ही सूक्ष्म क्यों ना हो।
लेकिन फिर सवाल उठता है कि बाइबल या टोरा में तो ऐसी बातें भरी पड़ी हैं। ईश्वर का हाथ, ईश्वर का गुस्सा, इनका क्या करें?
नहीं, वो इन्हें नजरअंदाज नहीं करते। यही उनकी व्याख्या की कला सामने आती है। वो कहते हैं कि ये सब रूपक है, प्रतीक है।
अच्छा।
ईश्वर का हाथ उसकी शक्ति का प्रतीक है, उसकी आंख उसके ज्ञान का। और यही उनका वो मशहूर सिद्धांत आता है कि टोरा मनुष्यों की भाषा में बात करती है।
हाँ, ये मैंने पढ़ा है। मतलब
धर्म ग्रंथ को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे वो समझ सकें, भले ही वो भाषा ईश्वर की असली प्रकृति का पूरी तरह वर्णन न कर पाए। तो जो पढ़ा लिखा पाठक है उसका काम है कि वो इस शाब्दिक परत के पार जाकर गहरे दार्शनिक अर्थ को समझे।
और इसी से जुड़ा है उनका नकारात्मक धर्मशास्त्र या विया नेगेटिवा का विचार। वो क्या है? वो काफी दिलचस्प लगता है।
हाँ, वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मेमोनाइट्स कहते हैं कि हमारी भाषा और हमारी सोच ईश्वर की असलियत को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम है। हम सकारात्मक रूप से ये नहीं बता सकते कि ईश्वर क्या है।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं ईश्वर बुद्धिमान है, हम अनजाने में उसे अपनी बुद्धि की सीमित परिभाषा में बांध देते हैं। इसलिए सच के ज्यादा करीब पहुंचने का तरीका ये है कि हम ये बताएं कि ईश्वर क्या नहीं है।
मतलब नगेशन करके।
हाँ, उदाहरण के लिए ये कहना कि ईश्वर अज्ञानी नहीं है शायद ज्यादा सटीक है बजाय ये कहने के कि ईश्वर बुद्धिमान है। ये हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है। सोचिए, ईश्वर के बारे में सबसे ऊंचा ज्ञान शायद यही मानना है कि हम उसे पूरी तरह जान ही नहीं सकते।
वाह, ये तो बहुत विनम्र दृष्टिकोण है। तो पहले भाग का सार ये हुआ कि ईश्वर को हमारी कल्पनाओं से आजाद करना और धर्म ग्रंथ को समझने का एक ज्यादा गहरा दार्शनिक तरीका सीखना।
बिल्कुल, इससे वो पहली बड़ी उलझन दूर होती है जो आस्था और तर्क के बीच दिखती है। अब दूसरे भाग पर आते हैं जहां मेमोनाइट्स ईश्वर और इस बनाई हुई दुनिया के रिश्ते को देखते हैं।
हाँ, इसमें ब्रह्मांड विज्ञान, सृष्टि और भविष्यवाणी जैसे बड़े विषय आते हैं। उस जमाने का विज्ञान तो अरस्तु और टॉलेमी के मॉडल पर आधारित था।
हाँ, पृथ्वी केंद्र में और सारे ग्रह नक्षत्र चक्कर लगा रहे हैं।
तो मेमोनाइट्स इसे बाइबल की दुनिया से कैसे जोड़ते हैं?
वो उस समय के वैज्ञानिक मॉडल को एक तरह से अपनाते हैं जिसमें ब्रह्मांड को प्याज की परतों की तरह देखा जाता था, संकेंद्रित खगोलीय गोले,
सेलेस्टियल स्फीयर्स।
हाँ हाँ, जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। मेमोनाइट्स कहते हैं कि हर गोले को एक अलग बुद्धि या इंटेलेक्ट चलाता है जिसे हम फरिश्ता या एंजल भी कह सकते हैं।
अच्छा, फरिश्तों को उन्होंने बुद्धियों से जोड़ दिया।
हाँ, और सबसे ऊपर ईश्वर है जो पहला चलाने वाला या प्राइम मूवर है जिससे सारी गति और ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। इस तरह वो फरिश्तों की धार्मिक अवधारणा को अरस्तु के दर्शन से, मतलब एक तरह से मिला देते हैं।
लेकिन एक बड़ा टकराव तो सृष्टि को लेकर था। अरस्तु मानते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से है, अनंत है, जबकि बाइबिल या टोरा कहती है कि ईश्वर ने इसे एक समय पर शून्य से बनाया, क्रिएटो एक्स नीलो। इस पर मेमोनाइट्स क्या कहते हैं? ये तो सीधा विरोध लगता है।
ये बहुत ही नाजुक संतुलन है जो वो साधते हैं। मेमोनाइट्स अरस्तु का बहुत सम्मान करते हैं, पर वो उनके तर्कों की बारीकी से जांच करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अरस्तु ये साबित नहीं कर पाए कि ब्रह्मांड हमेशा से है।
उनके प्रमाण निर्णायक नहीं है।
हाँ, चूंकि दर्शन यहाँ कोई पक्का जवाब नहीं दे पा रहा, मेमोनाइट्स कहते हैं कि हम रहस्योद्घाटन यानी टोरा की बात मान सकते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया है। उनका तर्क है कि सृष्टि का विचार एक ऐसे ईश्वर से ज्यादा मेल खाता है जो इच्छा और उद्देश्य से काम करता है, और ऐसा ईश्वर ही तो आदेश दे सकता है, नियम बना सकता है,
जैसा कि धर्मों में होता है। तो यहाँ वो दर्शन की सीमाएं भी दिखा रहे हैं।
बिल्कुल, और भविष्यवाणी के बारे में उनका नजरिया भी काफी अलग है। वो इसे कोई जादुई घटना नहीं मानते हैं ना?
हाँ, ये भी सुना है।
बिल्कुल, वो भविष्यवाणी को एक प्राकृतिक, बल्कि कहें कि बौद्धिक घटना के रूप में देखते हैं। ये इंसान के विकास का उच्चतम स्तर है, जब कोई व्यक्ति अपनी तार्किक बुद्धि और अपनी कल्पना दोनों को पूरी तरह विकसित कर लेता है, तो उसे ईश्वर की बुद्धि से एक खास तरह का प्रवाह, एमिनेशन मिल सकता है।
तो पैगंबर एक तरह से सुपर दार्शनिक हुआ?
हाँ, सुपर दार्शनिक और सुपर दूरदर्शी कह सकते हैं। हजरत मूसा की भविष्यवाणी को वो सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि वो सीधे बुद्धि से बुद्धि का संपर्क था, उसमें कल्पना का दखल नहीं था।
अच्छा, तो दूसरे भाग में मेमेनाइड्स ने दिखाया कि कैसे उस समय के विज्ञान और धार्मिक विचारों में तालमेल बिठाया जा सकता है। अब आते हैं तीसरे और अंतिम भाग पर, जो शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ा है, नैतिकता, कानून और जीवन का उद्देश्य।
हाँ, तीसरा भाग इन सब ऊंची दार्शनिक बातों को जमीन पर लाता है। यहाँ सवाल है, दुनिया में दुख और बुराई क्यों है? द प्रॉब्लम ऑफ ईवल। ईश्वर ने जो नियम दिए हैं उनका क्या मतलब है, और आखिर में हम इंसानों का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है?
बुराई की समस्या, ये तो हमेशा से परेशान करती आई है। अगर ईश्वर अच्छा है तो दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों हैं? मेमोनाइट्स क्या जवाब देते हैं इसका?
उनका जवाब काफी दिलचस्प है। वो कहते हैं, ईश्वर सीधे तौर पर बुराई पैदा नहीं करता। बुराई असल में अच्छाई की कमी है, उसका अभाव है, प्राइवेशन।
जैसे अंधेरा रोशनी का न होना है।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही, बुराई अच्छाई का न होना है। ये ज्यादातर पदार्थ यानी मैटर की सीमाओं की वजह से होता है। उन्होंने तीन तरह की बुराइयों की बात की। एक तो प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां, जो हमारे भौतिक शरीर की सीमाओं से जुड़ी हैं। दूसरी, इंसान का इंसान पर जुल्म, युद्ध, अन्याय। और तीसरी, इंसान का खुद पर जुल्म, बुरी आदतें, नैतिक पतन।
और मेमोनाइट्स कहते हैं कि ज्यादातर दुख
दूसरी और तीसरी तरह की बुराई से आते हैं, जो हमारी अपनी अज्ञानता, मूर्खता और गलत चुनाव का नतीजा है, ईश्वर की मर्जी का नहीं।
यह एक अलग नजरिया है। और जो धार्मिक नियम कानून हैं, जैसे टोरा के 613 आदेश, क्या वो बस आंख बंद करके मानने के लिए हैं?
नहीं, मेमोनाइट जोर देकर कहते हैं कि हर नियम का एक तर्कसंगत उद्देश्य है, ताम कहते हैं उसे। ये मनमाने ढंग से नहीं बनाए गए। वो इन्हें दो बड़ी श्रेणियों में बांटती हैं। कुछ नियम शरीर की भलाई के लिए हैं, यानी समाज को व्यवस्थित, न्यायपूर्ण और स्वस्थ बनाते हैं।
अच्छा।
दूसरे नियम आत्मा की भलाई के लिए हैं, यानी हमें सही विचार देते हैं, हमारी बुद्धि को विकसित करते हैं और हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं।
कोई उदाहरण?
जैसे खाने पीने के नियम, कोशर वगैरह, शायद स्वास्थ्य और आत्म अनुशासन के लिए हो, जबकि मूर्ति पूजा के खिलाफ नियम हमें झूठे और सीमित विचारों से बचाकर ईश्वर की सच्ची समझ की ओर ले जाते हैं।
तो इन सब बातों से जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या निकलता है? स्वर्ग जाना, नियमों का पालन करना, क्या है परम उद्देश्य?
मेमोनाइट्स के अनुसार ये सब साधन हो सकते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य है मानव आत्मा की बौद्धिक पूर्णता, इंटेलेक्चुअल परफेक्शन।
बौद्धिक पूर्णता मतलब?
यानी अपनी बुद्धि को विकसित करके ईश्वर और इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जितना संभव हो सके उतना जानना। यही ज्ञान ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम पैदा करता है, अमोर देई इंटेलेक्चुअलिस, और यही पूजा का सबसे ऊंचा रूप है। यही हमें सच्ची अमरता के करीब ले जाता है।
ज्ञान ही प्रेम है और वही पूजा है।
हाँ, इसे समझाने के लिए वो आखिर में महल का दृष्टांत देती हैं। कल्पना कीजिए, ईश्वर एक महल के अंदर राजा है। कुछ लोग तो शहर के बाहर हैं, नास्तिक। कुछ शहर में हैं, लेकिन महल की तरफ पीठ किए हुए हैं, गलत मान्यताओं वाले। कुछ महल के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सिर्फ नियमों का पालन करने वाले, बिना समझे। कुछ बाहरी कमरों में पहुंच गए हैं, दर्शन पढ़ना शुरू करने वाले। और बहुत कम लोग ही राजा के सिंहासन कक्ष तक पहुंच पाते हैं। ये वो पैगंबर और सच्चे दार्शनिक हैं जिन्होंने ईश्वर का प्रत्यक्ष बौद्धिक ज्ञान हासिल कर लिया है।
वाह, ये दृष्टांत तो सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर हम पूरी किताब के निचोड़ को देखें तो कुछ बातें साफ उभर कर आती हैं। सबसे पहली तो यही कि आस्था और तर्क दुश्मन नहीं, दोस्त हो सकते हैं।
हाँ, अगर हम दोनों को सही ढंग से समझें।
बिल्कुल।
और दूसरी बड़ी बात है ईश्वर के बारे में हमारी सोच को परिपक्व बनाना। उसे इंसानी गुणों और सीमाओं से परे समझना, जिसे उन्होंने नकारात्मक धर्मशास्त्र कहा।
हाँ, कि हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, बस ये कि वो क्या नहीं है।
बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारी कल्पना से कितना बड़ा है। शायद यही वजह है कि उसके बारे में सबसे अच्छी बात चुप रहना है, सिवाय ये बताने के कि वो हमारी समझ की हर चीज नहीं है।
तीसरा, धर्मग्रंथ को सिर्फ शाब्दिक रूप से ना पढ़कर उसके गहरे रूपक अर्थों को तलाशना। मैमोनाइट्स की वो बात याद आती है, टोरा मनुष्यों की भाषा में बात करती है, यानी हमें ऊपरी मतलब से आगे जाना होगा।
हाँ, बौद्धिक खोज कोई पाप नहीं, बल्कि ईश्वर को और गहराई से जानने का एक रास्ता है। चौथा, धार्मिक या नैतिक नियमों के पीछे के तर्क और उद्देश्य तआम को समझना। ये नियम सिर्फ थोपे नहीं गए हैं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक भले के लिए हैं।
ये अंधी आस्था को चुनौती देता है। और पांचवा, जो मुझे सबसे क्रांतिकारी लगता है, ज्ञान प्राप्त करना, अपनी बुद्धि को विकसित करना ही पूजा का सबसे ऊंचा रूप है।
हाँ, ईश्वर का सच्चा ज्ञान ही ईश्वर के सच्चे प्रेम की ओर ले जाता है। मनुष्य की अंतिम पूर्णता तर्कसंगत बनना है। सोचिए, 850 साल पहले ये कहना कि दार्शनिक और वैज्ञानिक आध्यात्मिक शिखर पर हो सकते हैं, कितना बड़ा कदम रहा होगा।
बिल्कुल, ये हमें आज भी प्रेरित कर सकता है। और ये हमें सीधे इस सवाल पर लाता है कि ये पुरानी किताब आज हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है, इसका हमारे जीवन में क्या इस्तेमाल हो सकता है।
सबसे पहला तो यही है कि आज के जमाने में विज्ञान और हमारी निजी आस्था के बीच तालमेल बिठाने में मदद मिल सकती है। मैमोनाइट्स का तरीका सिखाता है कि धार्मिक ग्रंथों को विज्ञान की किताबों की तरह अक्षरशः लेने की बजाय उन्हें ज्ञान, नैतिकता और प्रेरणा के गहरे स्रोत के रूप में देखें।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, शायद ये हमें एक ज्यादा परिपक्व आध्यात्मिकता विकसित करने में मदद कर सकता है। ईश्वर की वो छवि जो सिर्फ हमारी इच्छाएं पूरी करता है या सजा देता है, उससे आगे बढ़कर।
हाँ, ईश्वर को ब्रह्मांड के रहस्य, बुद्धि और विस्मय के स्रोत के रूप में देखना, ज्ञान की खोज को ही एक आध्यात्मिक यात्रा मानना।
तीसरा, ये हमें अपने जीवन के नियमों और परंपराओं में गहरा अर्थ खोजने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो धार्मिक नियम हों, सामाजिक रीति रिवाज हों,
या हमारे अपने बनाए नैतिक सिद्धांत। क्यों ना हम उनके पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करें। जैसे भारत में ही कितनी परंपराएं हैं, अगर हम उनके पीछे के सामाजिक या मनोवैज्ञानिक कारणों को समझें तो शायद उनका पालन ज्यादा सार्थक लगे,
या फिर हम उन्हें बदलने की जरूरत महसूस करें अगर वो तर्कसंगत ना लगे।
बिल्कुल। चौथा, शिक्षा और सीखने को सिर्फ नौकरी पाने का जरिया न मानकर जीवन को सार्थक बनाने का एक अहम हिस्सा समझना।
हाँ, ब्रह्मांड के बारे में सीखना, इतिहास पढ़ना, कला को समझना, ये सब एक तरह से ईश्वर की रचना या मानवीय क्षमता को समझना है, और ये खुद में एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है।
और पांचवा, ये हमें रोजमर्रा के नैतिक फैसले लेने में भी मदद कर सकता है। जब हम किसी दुविधा में हों तो हम पूछ सकते हैं, कौन सा रास्ता समाज में ज्यादा भलाई और न्याय लाएगा, कौन सा विकल्प मुझे एक बेहतर, ज्यादा समझदार और गुणी इंसान बनने में मदद करेगा।
ये नैतिकता को सिर्फ नियमों की सूची से ऊपर उठाकर एक सकारात्मक लक्ष्य देता है। तो कुल मिलाकर मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ा सबक यह है कि सवाल पूछना, सोचना और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना आस्था के खिलाफ नहीं जाता।
हाँ, बल्कि एक गहरी और मजबूत आस्था की निशानी हो सकता है।
बिल्कुल, मैमोनाइट्स उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो परंपरा और आधुनिक सोच के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं।
और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि कैसे उन्होंने ज्ञान की खोज को ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता और पूजा का सबसे ऊंचा रूप बताया। ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है। यह हमें याद दिलाता है कि महान ग्रंथों को सिर्फ सतह पर नहीं, बल्कि उनकी गहराई में उतरकर पढ़ना चाहिए,
उनके ज्ञान और विवेक को आत्मसात करना चाहिए। सच में, द गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड सिर्फ यहूदी दर्शन की एक किताब नहीं, ये सत्य की खोज में लगी मानव आत्मा की कहानी है।
हाँ, ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारा दिमाग और हमारा दिल, हमारा तर्क और हमारी आस्था एक साथ मिलकर एक ज्यादा संतुलित और सार्थक जीवन बना सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।